शांति। सभी ठीक है? थक तो नहीं गए? मैं देख रही हूं उपस्थिति कम है, धीरे धीरे आ रहे हैं। रात को देर हो गई, आराम ठीक किया? जी अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। कल का ड्रामा भी अच्छा लगा ना? तो फिर से हम सब कहेंगे ओम शांति। अब ओम शांति का अर्थ तो हम सब ने समझ लिया है। ओम अर्थात वही मैं, ओम वही मैं। वैसे तो बहुत अर्थ है, बहुत अर्थ, लेकिन जो सबसे सरल अर्थ है ओम का, वही मैं। और फिर शांति, वही मैं हूं जिसका स्वभाव शांति है। शरीर का स्वभाव शांति नहीं है। शरीर का स्वभाव तो हलचल है। जितना शरीर को हम एक्टिव रखते हैं उतनी शक्ति मिलती है। इसलिए एक्सरसाइज करते हैं ना, चलना फिरना ये बहुत जरूरी है। प्लेन में भी जाते हैं, अगर बहुत घंटे बैठना पड़ता है, दूर दूर जाना होता है, कई घंटों का सफर होता है, तो वो बीच बीच में बताते हैं ऐसे हाथ करो, ऐसे पैर करो, ये करो, खड़े हो जाओ। तो इसीलिए शरीर को तो हलचल चाहिए, तब एक्टिव रहेगा। पर मन जो आत्मा की शक्ति है, वो जितना शांत होगा उतनी शक्ति बढ़ेगी। और जब हम कहते हैं हमको शांति चाहिए, तो शरीर को शांति नहीं चाहिए, चाहिए शरीर को शांति। क्योंकि शरीर की शांति का मतलब होता है मृत्यु। शरीर की शांति कब होती है? जब किसी की मृत्यु होती है तब कहते हैं इनका देह शांत हो गया, ठंडा हो गया ना, शांत हो गया, सब कुछ पथरा गया। तो शरीर शांत होना माना मृत्यु की निशानी। पर जितना ही आत्मा की शांति का अनुभव होता है, माना आत्मा इतनी एक्टिव है, इतनी शक्ति रूप है। तो योग क्या है और राजयोग क्या है उसको कल समझा। योग अर्थात जोड़, मिलन, संबंध, और राजयोग अर्थात उस सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, ऊंचे से ऊंचा परमात्मा से आत्मा का संबंध। वैसे तो कोई भी संबंध में या मिलन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ये भी हम आपस में मिलन ही तो कर रहे हैं, और इसमें ऊर्जा कौन सी काम कर रही है? बिजली। और उस बिजली के आधार से लाइट है, माइक है, ये सब है। अभी बिजली चली जाए, अंधेरा हो जाए, तो न आप हमें देख सकेंगे, न हम आपको देख सकेंगे, न मेरी आवाज आप सुन सकेंगे, दूर दूर है। तो यहाँ ये लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये ऊर्जा है जो मिलन का अनुभव कराती है। अब आत्मा का परमात्मा से मिलन के लिए कौन सी ऊर्जा चाहिए? कौन सी ऊर्जा चाहिए जी? आंतरिक। पर आंतरिक हम किसको कहेंगे? आंतरिक माना जी आत्मा। आत्मा का ही तो मिलन परमात्मा से करना है, तो उस मिलन के लिए कौन सी ऊर्जा चाहिए? राजयोग। राजयोग तो वो चार्जर का काम करता है, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, पावर हाउस से प्लग इन करते हैं तो करंट आता है, उससे हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। तो वो करंट कौन सा है जिससे आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है? हाँ? वो है मन। मन ही वो ऊर्जा है जिससे मिलन होता है। इसीलिए भगवान ने कहा इस मन को मेरे में लगाओ, क्योंकि ये मन ऊर्जा का काम करेगा, और अगर परमात्मा में लगा तो आत्मा को शक्ति का अनुभव होगा। लेकिन आज ये मन बेलगाम घोड़ा होके भटक रहा है। इसका मूल कारण क्या है अगर हम देखें, क्योंकि हमने अपने आप को देह से आइडेंटिफाई किया, मैं फलाने नाम रूप धर्म जाति भाषा वाला हूं, तो जो देह से संबंधित बातें उसी उसको ही तो मन याद करेगा, क्योंकि मन इंद्रियों के वश हो चुका है। तो व्यक्ति वस्तु वैभव ही मन में याद आएंगे। हम बैठेंगे पूजा करने, पाठ करने, जप करने, तप करने, हवन करते, तीर्थ करते, यात्राएं करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, पर बहुत कुछ करते हैं, सब मन के ईश्वर में लगे। माला भी फेरेंगे, मंत्र भी जाप करेंगे, कोई सामने मूर्ति भी होगी उसका भी ध्यान करने की कोशिश करेंगे। अब ये सब जो कुछ भी हम करते हैं ये सब स्थूल रूप तो है, पर मन तो सूक्ष्म है। अब वो सूक्ष्म मन इन स्थूल चीजों के आधार से कैसे टिकेगा? सूक्ष्म को तो सूक्ष्म चाहिए, स्थूल को टिकाने लिए स्थूल चलेगा, है ना? अब आप कि आजकल देखो, बता रहे थे कल क्या दुर्दशा है युवा पीढ़ी की भी। अब किसी की किसी से दिल लग गई, अब दिल लग गई तो पता चल गया माँ बाप को कि मेरी बेटी के फलाने से दिल लग गई। अब बेटी की उनसे नहीं करनी है शादी, संबंध नहीं जोड़ना है, तो माँ कहेगी, बाप कहेगा तुमको यहीं बैठना है, कहीं नहीं जाना है, एक कमरे में उसको बंद कर दो, मिलने नहीं देना है, ना फोन कर सकती है, ना ईमेल कर सकती है, सब साधन सब रास्ते बंद। अब आपने उसके तन से मिलने के तो रास्ते सब बंद कर दिए, पर मन के लिए आप रोक सकते हो? रोक सकते हो? मन को कोई दीवार रोक सकती है? क्योंकि मन तो सूक्ष्म है ना। तो सूक्ष्म को अगर हमें रोकना है तो सूक्ष्म हमें आधार देने होंगे। कैसे करेंगे, क्या आधार होता है सूक्ष्म के लिए, सूक्ष्म वो हम देखेंगे, क्योंकि वही सूक्ष्म ईश्वर के लिए भी चाहिए। इसलिए मन को आज तक हमने परमात्मा में लगाने के लिए क्या आधार दिया? चलो मंत्र दिया, वो तो मुख को काम दिया, कोई जाप मिला हमें करने के लिए और हमें कहा गया कि 1,00,000 बार ये सारा दिन में जाप करना है, तो वो मंत्र जाप चलता रहेगा, सारा दिन चलता रहेगा। 1,00,000 का जाप है, कोई कम नहीं है, और गिनते भी रहेंगे, जाप भी करते रहेंगे, गिनते भी रहेंगे, नोट भी करते रहेंगे, लिखते भी रहेंगे, और 1,00,000 का जाप पूरा हो गया तो कहेंगे आज का पूरा हो गया। अब जब हम कहते 1,00,000 का जाप, तो योग हमारा परमात्मा से नहीं जुड़ा, पर वो 1,00,000 से जुड़ गया, है ना, क्योंकि मन लाख में गया न कि ईश्वर में गया। और मुख को तो चलो काम मिला, उस समय कुछ मुख से अपशब्द नहीं बोलेंगे क्योंकि मंत्र जाप चल रहा है, पर मन को तो काम दिया ही नहीं। फिर चलो माला भी हमें दी गई कि ये माला फेरनी है, तो उंगलियों को काम मिला मणके फिरानी है, पर मन को तो काम मिला नहीं। आंखों को भी मैंने काम दे दिया, कोई सामने मूर्ति रखी है और उस मूर्ति का हम ध्यान करते हैं, पर मन को तो काम दिया ही नहीं। तो मंत्र माला मूर्ति ये सब तो स्थूल चीजें हैं। इसीलिए कबीर का फिर एक दोहा याद आता है, याद होगा, कर का मन का फेरत युग भया, पर फिरा न मन का फेर। हाथ के मन के फेरते फेरते तो युग बीत गए, पर मन का मन का तो फिरा ही नहीं। अब कर का माना हाथ का मन का छोड़कर मन का फेर। तो मन का कौन सा होता है? मन को भी अगर हमें मन का देना है या मन का फेरना, उसका मतलब क्या है? मन सूक्ष्म है तो उसको सूक्ष्म आधार चाहिए। अब तक हम अपने आप को देह से आइडेंटिफाई करते थे तो जरूर वही था, तो आधार तो मन देहधारियों में ही भटकता रहा है। मैं एक माँ हूं तो बच्चे याद आएंगे, मैं एक डॉक्टर हूं तो पेशेंट याद आएंगे, बीमारियां दवाइयां हॉस्पिटल यही है। मैं एक वकील हूं तो वकील की बातें जो वकालत की है, कोर्ट है कचहरी आदि आदि, क्लाइंट और वो कानून, यही सब बुद्धि में आएगा। तो जैसी अपनी स्थिति समझेंगे वही बातें मन में आएगी। अब राजयोग में हमें क्या पता चला कि मैं एक आत्मा हूं, तो आत्मा का संबंध तो परमात्मा के साथ है। हर जन्म में हमने परमात्मा को याद भी किया है। ये देहधारी जो मिले, माँ बाप भाई बहन मामा चाचा काका, ये तो इस जन्म के संबंधी है। कोई कर्मों अनुसार ये संबंध जुड़ते हैं देहधारियों के साथ, लेकिन परमात्मा के साथ तो आत्मा का अविनाशी संबंध है। हर जन्म में हमने प्रार्थना में कहा, तुम मात पिता हम बालक तेरे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव पितु मात सहायक स्वामी सखा, है ना, हर कहते हैं ना। तो हर जन्म में हमने उसको याद किया है, तो ये किसने याद किया? आत्मा ने याद किया। पर देह क्योंकि हम समझ रहे हैं तो ये देह तरफ ही बुद्धि जाती है। तो कारण क्या था, क्यों नहीं मन लगा परमात्मा में, इसको भी हमें समझना है। तो कारण का जब पता चलेगा तब तो निवारण होगा ना, बिना कारण का पता चले निवारण भी कैसे होगा? अब डॉक्टर के पास हम जाएंगे, हम कहेंगे यहां बहुत दर्द है पेट में। अब डॉक्टर्स आजकल कहेंगे जाओ पहले टेस्ट कराओ, सोनोग्राफी कराओ, ये कराओ वो कराओ, है ना, बहुत टेस्ट चाहिए, क्यों दर्द है? तो कारण का जब पता चले तो सही दवाई मिल सकती है, नहीं तो ऐसे ही दवाई देते रहो। एक बहन थी, वो अपना अनुभव सुना रही थी, बहुत पेट में दर्द, बहुत पेट में दर्द। तो सब ने कहा नहीं नहीं गैस होगा, गैस होगा, अभी कहाँ दर्द है, वो भी इसको समझ में कुछ आता नहीं था, तो गैस ही लगा। फिर किसने कहा अजवाइन खाओ, किसने कहा ये करो वो करो, सब पता नहीं क्या क्या इलाज कराए, लेकिन दर्द तो जाए ही नहीं। तो किसी ने कहा अरे भाई ऐसे मत अपना समय लगाओ, आप जाओ डॉक्टर के पास दिखाओ, कुछ और कारण हो। तो गई, जैसे ही बताया तो डॉक्टर ने तुरंत पहचान लिया, कहा मुझे लगता अपेंडिक्स होगा क्योंकि जहां दर्द बहुत था। तुरंत सोनोग्राफी कराई और पता चला कि इतना उनका अपेंडिक्स सूझ गया था, ये सच्ची बात है। और पता चला कि बस अभी बस्ट होने पर है एकदम। तो डॉक्टर ने कहा अब भी ऑपरेशन करना पड़ेगा, अगर आपने कल तक भी छोड़ा तो मुझे शक है कि पता नहीं बचोगी या नहीं। तो मान लो समय पर फिर भी पहुंच गई, भाग्यशाली थी, अगर और रोकती तो अंदर ही बस हो जाता, एक का बस भी हो गया था और वो पूरा टॉक्सिन पूरे शरीर में फैल गया और खत्म हो गई, क्योंकि उसने कराई नहीं, दर्द है पता नहीं क्या क्या लेती रही। तो कारण का जब तक पता न चले तब तक निवारण सही नहीं मिलेगा। तो आज भी हम समझते ये मन तो चंचल है, पापी है, दुष्ट है, नीच है, घोड़ा है, ये है। फिर मन को दमन करने की कोशिश करते हैं, सोचते बस मन शून्य हो जाए, ब्लैंक हो जाए, ब्लैंक हो जाए। ब्लैंक कैसे होगा? दर्द है बस पेन किलर लेते जाओ, कारण का तो पता ही नहीं, तो उसका वो लेने का देना ही पड़ जाता क्योंकि और साइड इफेक्ट्स होंगे। तो या तो हम दमन करने की कोशिश करते हैं मन को, कुछ न सोचूं, ब्लैंक बन जाऊं, और इससे तो जो मन की रचनात्मकता है उसको भी हम दबा देते हैं क्योंकि बहुत रचनात्मक है मन। जैसे छोटा बच्चा चंचल बहुत है, पर उस चंचल बच्चे को आप बांध के रख दो सारा दिन और उसको मारते ही रहो बेचारा, उसकी जो अंदर की रचनात्मकता वही खत्म कर देंगे, वो तो दबा हुआ ही रहेगा, उसकी शक्ति खत्म कर देंगे। परंतु एक बहुत चंचल बच्चा है तो अगर उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, लो बेटा तुमको जो चाहिए करो, तो घर में दौड़ता रहेगा, भागता रहेगा, तोड़फोड़ करता रहेगा, माँ के नाक में दम करता रहेगा। तो छोड़ भी नहीं सकते और उसको बांध के भी नहीं रखना है, नहीं तो उसकी रचनात्मकता भी खत्म कर देंगे। तो समझदार जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों को कैसे संभालते हैं, चंचल बच्चों को, यहाँ सब माँ बाप बैठे हैं ना, तो कैसे समझाते, मारते रहते हैं क्या, या छोड़ देते हैं, दोनों ही नहीं करते। तो मन को भी अगर हम छूट दे दे, जो चाहे सो सोचो, तो वो तो है ही वैसे ही पहले ही बेलगाम घोड़ा है, बहुत ताकत है, तो पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे मन से। तो समझदार माँ बाप अपने बच्चों को कैसे कंट्रोल करते, उनको कोई चीज देते हैं, खेलो इनसे खेलो, आजकल क्रिएटिव गेम्स बहुत आती है, जितनी आयु बच्चे की होती उसी अनुसार उसको बिजी रखने के लिए उनको कुछ न कुछ खेल देते हैं कई प्रकार के। अब बच्चा जब उसमें व्यस्त होता है तो फिर जरूर है उसमें रचनात्मकता है। आजकल बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं सारा दिन, वीडियो गेम, माँ बाप ही परेशान रहते क्योंकि बहुत ज्यादा खेल देते हैं, सारा दिन टुशुम 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 ये करते रहते हैं। अब वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा भी नहीं, परंतु अगर उनको साथ साथ समझाते भी रहे, क्रिएटिव भी हैं, उसमें से ज्ञान भी प्राप्त होता है, तो ये बच्चे का विकास होगा। तो मन भी एक बच्चे की तरह है, मन कोई शैतान नहीं है, मन कोई आतंकवादी नहीं है, मन कोई दुश्मन नहीं है, मन आपका बड़ा मित्र है। यही मन ईश्वर में भी लगाना है, लेकिन इसको कैसे टेम करेंगे वो राजयोग बताता है। तो हम देखेंगे कि वास्तव में राजयोग हम कैसे करते हैं और मेडिटेशन शब्द ही वास्तव में क्या है। आज मेडिटेशन शब्द तो बहुत ही प्रख्यात है और कई स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं मेडिटेशन सिखाते हैं, परंतु अक्सर करके जो भी डिफरेंट व्यूज है, अलग अलग है, उनमें से कई कहते हैं बस कुछ नहीं सोचो, चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को सप्रेस करो। अब कितनी देर तक आप सप्रेस कर सकेंगे, कितनी देर तक दबा सकेंगे, ज्यादा देर तो नहीं। अगर हम ये सोचते हैं मन को हमें कोई चिंता नहीं देना, मन ब्लैंक शून्य बनाना है, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, अभी कुछ नहीं सोचना भी तो सोच है ना, कुछ नहीं सोचना भी सोच है, इसलिए मन को शून्य कर ही नहीं सकते। हाँ, मन में क्या चिंतन दे वो जरूर हम डिसाइड कर सकते हैं। फिर कई समझते हैं कि मन के लिए बहुत फोर्स करना पड़ता है तभी ये मन शांत होगा या कहीं एकाग्र होगा, बहुत फोर्स करना पड़ता है। ये अलग अलग विचार है। कोई कहेंगे कि नहीं, मन तो मेरा कभी शांत होगा ही नहीं क्योंकि बहुत स्पीड है, इसलिए मैं मेडिटेशन तो कर ही नहीं सकता हूं, मेरे से तो होगा ही नहीं क्योंकि बहुत मेरा मन चंचल है। कई फिर कहते हैं मेडिटेशन करना है तो हमें कोई विशेष पोस्चर में बैठना पड़ेगा, पद्मासन करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ये सब अलग अलग मुद्राएं करनी पड़ेगी, ये सब मेरे से नहीं होगा। कई लोग इससे भी कतराते, ये सब नहीं होगा, पद्मासन तो सब नहीं कर सकेंगे। तो जैसे आपको कल बताया कि शीर्षासन करने की जरूरत नहीं है, पर सिर का बैलेंस जरूर रखना है। इसी प्रकार पद्मासन भले न कर सको, जरूरी नहीं, हम भी तो ऐसे ही बैठे, लेकिन पद्म जैसा जीवन तो बना सकते हैं ना। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते भी न्यारा रहता है, क्या हमारा जीवन भी ऐसे रह सकता है? संसार में भी हमें रहना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, पर कैसे हम न्यारे और प्यारे होके रहें ये जरूर राजयोग सिखाता है। तो इसीलिए कोई विशेष पोस्चर हो उसकी भी जरूरत नहीं है। फिर कई कहते हैं कि मेडिटेशन के लिए तो बस एकांत स्थान ही हो सकता है, मेरे घर में तो इतना शोरगुल है, मैं तो मेडिटेशन कर ही नहीं सकता हूं, एकांत कहीं मिले तो जाके कर सकता हूं, कहते उसकी भी जरूरत नहीं। भले चारों ओर आवाज भी होता रहे तो भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इसलिए ये सारे जो विचार हैं, इन सब को हम नकार सकते हैं कि हम मेडिटेशन नहीं कर सकते। कोई फिर कहेंगे मेडिटेशन करना तो आंखें बंद करनी पड़ती है, हम कहते हैं वो भी भले मत करो, खुली रखो और जाने, चलते फिरते खाते पीते भी आप कर सकते हो। अगर आंखें बंद कर दी और माताएं रोटी बना रही है और आंखें बंद के मेडिटेशन कर तो रोटी जल जाएगी, तो आंखें तो खुली रखनी होगी ना, नहीं तो रोटी जल जाएगी। ड्राइविंग कर रहे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं, आंखें बंद कर दी तो एक्सीडेंट कर देंगे, इसलिए आंखें तो खुली रखनी है। आंखें का इनसे कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि मन की आंख से हम क्या देख रहे हैं। कई बार इन आंखों से तो हम बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन मन की आंख तो कुछ और देख रही है। और हम जब पास होते किसी के, वो कहीं और खोया हुआ है, आंखें तो उसकी खुली है, फिर हम कहेंगे अरे भाई मैं तो आपके सामने से ही गुजरा, आपने देखा नहीं, आपकी आंखें तो खुली थी, आप देख भी रहे थे। वो कहेगा सॉरी मैं ना कुछ और सोच में था। तो मन की आंख तो कुछ और ही देख रही थी, ये आंखें भले ये देख रही थी। तो मन को भी एक आंख है, मन भी एक आंख की तरह है, एक दृश्य। किसी ने कोई बात याद दिला दी, मन की आंख उसको एक तुरंत खींच लेती है, वो कैमरा बन जाती है, वो दृश्य दूसरा ही देखती है और ये होते हुए भी ये नहीं देख रही है। तो इसीलिए आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, परंतु मन की आंख हमें खोलनी है। ये खुली है बंद है ये कोई मायने नहीं रखता है। और ही अगर खुली होगी तो आप चलते फिरते खाते पीते भी वो मन की आंख और खुली रख करके कर सकते हैं। कई गलत काम करने से आप बच जाएंगे। और अगर आंखें बंद करके की तो केवल एक ही जगह पर करेंगे, और अगर आंखें खोल के की तो आपकी जो दृष्टि है वो भी पवित्र हो जाएगी, दृष्टि पवित्र हो जाएगी, आप सबको आत्मा रूप में देखेंगे। इसलिए और ही फायदा है अगर आंखें खुली करके रख किया तो। फिर कई समझते ठीक तो है लेकिन बोरिंग है ना, मंत्र जाप ही करना। हम कहते हैं यहाँ वो भी नहीं है, बोरिंग नहीं है, इतना क्रिएटिव है, इतना क्रिएटिव है जो आप बात मत पूछो, बहुत क्रिएटिव, इतना रचनात्मक उसको बना सकते हैं, अलग अलग अनुभव कर सकते हैं इस मेडिटेशन के अंदर, जो आपको आप इतने उसमें व्यस्त हो सकते हैं, जो मन आप कहेंगे कि अभी लगता नहीं, फिर कहना पड़ेगा अभी हम छोड़े कैसे, छूटेगा नहीं क्योंकि इतनी लगन लग जाएगी। और फिर कई समस्या बहुत डिफिकल्ट, हम कहते हैं बहुत सहज है। बच्चा कैसे अपने पिता को याद करता, डिफिकल्ट होता है क्या बच्चे को अपने पिता को याद करने में, तो कहाँ है डिफिकल्ट। तो इसीलिए ये जो कई हम व्यूज बताते हैं, वास्तव में हमें ये अपने अंदर ये बड़े भ्रम है, इनको हटाना पड़ेगा। और मन की जो ऊर्जा है उसको समझना पड़ेगा। मन बहुत बड़ी शक्ति है, इट इज द ग्रेटेस्ट बट लीस्ट अंडरस्टूड एनर्जी रिसोर्स ऑफ लाइफ। बहुत रिसोर्सेज है दुनिया के अंदर, बहुत उत्पादन की चीजें, लेकिन जो मन की शक्ति है उसके मुकाबले और कोई और शक्ति नहीं है। इसीलिए कहा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन जीते जगत जीत। मन को आपने वश में कर दिया तो आप जगत को जीत सकते हो। जैसे ये फिजिकल एनर्जीज को हम टैप करते हैं, सूर्य की एनर्जी को सोलर एनर्जी के रूप में यूज करते हैं, विंड एनर्जी को यूज करते हैं, वाटर की एनर्जी को, ये जो बिजली तैयार करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन स्थापित होती है, पानी की शक्ति से टर्बाइन्स चलती है। ये मैं विज्ञान की छात्रा रही हूँ तो थोड़े विज्ञान के उदाहरण में देती हूँ, तो आप सब समझ सकते हैं। तो ये कैसे, ये ऊर्जा, फिजिकल ऊर्जा कैसे हम उसको वश में करके उससे बहुत शक्ति का उत्पादन करते हैं। एटॉमिक एनर्जी, कितनी बड़ी एनर्जी है ये। तो जैसे वो एटॉमिक एनर्जी है, ये आत्मिक एनर्जी है, ये आत्मा की भी एक एनर्जी है। एक छोटी सी आत्मा में इतनी अनंत शक्ति है, आप सोचो। कई सोचते इतनी छोटी में क्या होगा, आजकल विज्ञान तो हमें प्रूव कर रहा है, इतनी छोटी सा छोटे से चीज में कितनी उसमें चीजें आजकल क्या क्या भर देते, छोटा सा एक कुछ भी चिप देखो उसमें इतनी मेमोरी है, इतना छोटा सा पेन ड्राइव में 35 GB की उसमें मेमोरी हम डाल सकते। आप सोचो ये सब क्या है, फिजिकल चीजों में भी इतनी शक्ति बढ़ सकते हैं। तो मन तो बहुत सूक्ष्म है, पर क्योंकि मन को हमने समझा नहीं इसलिए हमने सोचा मन तो पापी है, मन तो दुष्ट है, मन तो नीच है। और यही मन हम ईश्वर में भी लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं कौन हूं, एज आर योर थॉट्स सो इज योर लाइफ। मेरा जीवन मेरे मन के विचारों के आधार पर वो बीज है, जैसा बीज वैसा फल। तो हमारी सोच वो बीज के रूप में है, वैसा ही हमारा जीवन बनेगा, वैसा ही हमारा भाग्य बनेगा। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, इंग्लिश में कहते हैं वॉच योर थॉट्स फॉर दे बिकम वर्ड्स। आप जैसा सोचेंगे एक दिन वो मुख से निकलेगा जरूर। वॉच योर वर्ड्स फॉर दे बिकम एक्शन, जो मुख से बोलेंगे वो कर्मों में आएगा जरूर। वॉच योर एक्शंस फॉर दे बिकम हैबिट्स, आप जो आप कर्म करेंगे वो आपकी आदतें बन जाएंगे। वॉच योर हैबिट्स फॉर दे बिकम योर कैरेक्टर, वो आपका व्यक्तित्व बन जाएगा, आपका चरित्र बन जाएगा जो आपके हैबिट्स होंगे। एंड वॉच योर कैरेक्टर, वॉच योर कैरेक्टर फॉर दैट विल फॉर्म योर डेस्टिनी। आपका ही चरित्र आपका भाग्य निर्धारित करेगा। तो कहां से आरंभ हुआ, कहां से आरंभ किया, सोच से। हमारी सोच हमारे जीवन का आधार है, और वो सोच शक्ति किसमें है, मन में। और मन किसकी शक्ति है, ये आत्मा की शक्ति है। तो इसीलिए जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो मन को परमात्मा में लगाना होता है। अब ये मन इतना चंचल क्यों है, क्योंकि जो आधार हमको मिला वो तो स्थूल आधार लिया और मन सूक्ष्म है जैसे बताया। तो सूक्ष्म मन के लिए सूक्ष्म आधार जरूर देना पड़ेगा। अभी कौन से है सूक्ष्म आधार, अब दुनिया में 700 करोड़ की जनसंख्या है, अब क्या सारे 700 करोड़ लोगों को याद करते हो, क्या याद कर सकते हो? आप अपने शहर के ही लोगों को नहीं याद कर सकेंगे, अपने मोहल्ले के लोगों को, अपनी कॉलोनी से, आपकी बिल्डिंग के लोग, आपके रिश्तेदार भी कितने हैं, कहां तक आप सबको याद करेंगे? तो किसको आप याद करते हैं, आप सोचो किसको याद करते हैं? जिसको आप जानते ही नहीं है, कई बार तो पड़ोसी में कौन रहता है वो भी पता नहीं, पड़ोस में तो उसको भी कहां याद करेंगे, पता ही नहीं। तो मन कहीं भी जाता है उसका पहला आधार होता है उसका परिचय। बिना परिचय के मन कैसे जाएगा? आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, प्लेन में सफर कर रहे हैं, आपके पास बैठा है व्यक्ति, लेकिन जब तक उसका परिचय ही नहीं है तब तक कैसे कुछ कांटेक्ट भी होगा? परिचय चाहिए ना, भले पास में है। एक मिसाल देते हैं ना, महात्मा गांधी का मिसाल देते हैं कि महात्मा गांधी जी तो थर्ड क्लास में सफर करते थे और बिल्कुल लंगोटी पहनते थे एक, मतलब, परंतु उनका नाम कितना देश में था, जहां जहां जाते थे हजारों की भीड़ होती थी। तो बताते कि एक व्यक्ति था किसी शहर में, महात्मा गांधी जी आ रहे थे तो वो भी ट्रेन में चढ़ा, भाई महात्मा गांधी से मिलने जाना उस शहर में, गांधी जी आ रहे हैं। तो जैसे ट्रेन में चढ़ा तो गांधी जी ही भी उसी कंपार्टमेंट में चढ़े और बिल्कुल उसके पास में बैठे। अब ये देखा ये कैसा आदमी है, खाली लंगोटी पहनी हुई है, कौन है पता नहीं, समझ में। तो उसने क्या किया, थूक दिया और गांधी जी को लगा, तो गांधी जी ने हटा दिया, फिर दोबारा थूका, फिर उसको हटा दिया, कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं, उसको पता ही नहीं ये गांधी जी है। और जैसे स्टेशन आई तो गांधी जी भी उठे, ये भी उठा, क्योंकि पता था यही गांधी जी आने वाले। तो लोग खड़े थे नारे लगाते हुए, महात्मा गांधी, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय। तो यही गांधी जी जो मेरे पास बैठा था, कभी फोटो भी नहीं देखा था उसका, खाली नाम ही सुना था। तो जैसे गांधी जी की जय हो तो इसको लगा, रे मैंने तो इनके ऊपर थूका, मुझे कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी डांटा नहीं किसने, ये तो महान है। तो ये भी पीछे पीछे आया, और वो लोग कहे गांधी जी की जय, तो इसने पीछे से नारा लगाया महात्मा गांधी की जय। वो बताते महात्मा शब्द क्यों इनके साथ जुड़ा, क्योंकि इतने महान व्यक्ति जिन्होंने कितना सहन किया, तो इन्होंने कहा महात्मा गांधी की जय। तो उसके बाद सब ने बोलना शुरू किया महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। तो महात्मा नाम पड़ गया उनका, उसके पहले महात्मा नहीं बोलते थे, महान आत्मा हो गया ना, सहन करने की ताकत है। यानी कहने का भाव, उसके पास बैठा है तो भी उसको पता नहीं कि ये गांधी जी, नाम केवल सुना था। तो परमात्मा का परिचय, आत्मा का परिचय जब तक हमको नहीं है, तब तक मन किस में लगाएं ये पता ही नहीं है। परमात्मा कुल प्रभु ईश्वर याद किया, पर वो है कौन? तो आत्मा और परमात्मा का पहले परिचय चाहिए, तब तो मन जाएगा। अब कई बार चलो परिचय हो जाता है, हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, हम एक दूसरे से परिचय पूछते हैं, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आदि आदि परिचय लेते हैं। अब परिचय ले लिया बस, फिर चलो कुछ एक्सचेंज भी कर दिया, अपने कार्ड्स का एक्सचेंज करते हैं, परिचय होता है उसके अंदर। चलो वो उतर गया अपने स्टेशन पर, मैं उतर गया अपने स्टेशन पर, भूल गए कौन किसको याद करता है, याद भी नहीं आएगा। कितने लोग मिलते हैं, कहाँ तक याद करेंगे? तो परिचय भी केवल पर्याप्त नहीं है, फिर भूल जाएंगे। पर दूसरा संबंध है जिसके आधार से मन और लगता है। परिचय लेते लेते अगर ये पता चल गया कि आप जैसा ही वो कलाकार है, मान लो आप जैसा ही है, वो भी आर्टिस्ट है, वो भी ऐसा डांसर है, वो भी संगीतकार है, वो भी गायक, आप माना आपके अंदर जो कला है वो आप उस व्यक्ति में भी वही कला है, तो क्या होगा, आकर्षण होगा कि नहीं होगा? या पता चला कि एक ही गांव के रहने वाले थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही जगह काम करते थे, मतलब कुछ सिमिलैरिटी मिली, कुछ समानता मिली, एक धर्म के ही लोग हैं, एक जाति के लोग हैं, एक भाषा के लोग हैं, समझो, जहां थोड़ी भी सिमिलैरिटी है, कोई रिलेशनशिप बन गया, अरे मेरे फलाने के फलाने का फलाना है, बोले दूर का ही रिश्ता, पर पता चल गया एक रिश्ता था, रिश्ता है मेरा इनके साथ, तो कितनी घनिष्ठता हो जाती, अरे तुम तो मेरे भाई हो। तो दूसरा आधार मन के और करीब जाने का है संबंध। कोई संबंध होता है ना, तो मन और जल्दी नजदीक जाएगा। बाकी ठीक है, परिचय कोई बड़ी बात थोड़ी है, बहुतों का परिचय है। तो परमात्मा से हमारा घनिष्ठ संबंध है, ये क्यों भूल गए? अगर हम आपको कहें कि आप एक चित्र बनाइए जिसमें आप बीच में हैं और आपके इर्द गिर्द आप बनाइए एक सर्कल बनाइए, आत्मा बीच में और आपके इर्द गिर्द सर्कल, और उस सर्कल में उनके नाम लिखिए जो आपके बहुत निकट है, तो आप किसका नाम डालेंगे? अपने पत्नी का, बच्चे का, है ना, माँ का, बाप का, ये सबके नजदीक, बिल्कुल आपसे, आपके बिल्कुल नजदीक उनका नाम डालेंगे। फिर कहेंगे अच्छा दूसरा सर्कल बनाओ जिसमें थोड़ा उनसे दूर वाले हो, उनका उनका नाम डालो, तो फिर आपके मामा, चाचा, काका, फ्रेंड, है ना, चलो फिर और एक सर्कल बनाओ जिसमें आपके और दूर का रिश्ता हो, तो आप अपना ऑफिस के कलीग्स या कोई बॉस, मतलब जो आपके थोड़े थोड़े निकट है, कभी कभी मिलते हैं। लेकिन परमात्मा का नाम कहीं डाला है? एक एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, तो उसे परमात्मा का कहीं नाम ही नहीं है, सोचो तो सही, जिससे हमारा इतना लेना देना है हर वक्त, हे भगवान, हे ईश्वर, ओ गॉड, हाँ करते रहते, लेकिन हमने उसको अपना अंतिम सहारा मान लिया है। परमात्मा ऐसे नहीं याद आता है, जब और कोई रास्ता नहीं, हे भगवान, उसको अंतिम राज सहारा मान लिया, और सबसे पहला राज सहारा वही है, और हमने अपने रिश्तों में तो उसका कहीं जगह ही स्थान ही नहीं दिया। यहां तक भी कईयों को नहीं पता कि आखिर परमात्मा से मेरा कोई संबंध भी है। किसी से मैंने पूछा कि परमात्मा आपके क्या लगते हैं, भगवान आपके क्या लगते हैं, भगवान क्या लगते हैं, उसको तो ये अजीब प्रश्न लगा, भगवान कोई लगते हैं क्या हमारे? अरे सब संबंध है हमारे ईश्वर के साथ, जो संबंध आप जोड़ना चाहो आप जोड़ सकते हो। इसीलिए त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। सर्वम जिसके लिए सर्वम कहा और केवल मुख से ही बोला ना, मन से तो नहीं बोला, इसीलिए पता ही नहीं क्या संबंध है ईश्वर के साथ। इसलिए अंतिम सहारा समझ लिया उसको जिसके साथ सब संबंध है। अब राजयोग हमारी आंख खोलता है, अरे तुम्हारा तो सर्व संबंध जन्म जन्म का संबंध तो एक ईश्वर के साथ है। ये तो देहधारी संबंध तो कर्मों अनुसार है, और जब हिसाब किताब पूरा होता है कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। किसके साथ प्यार था, आत्मा से प्यार था या शरीर से प्यार था? कोई शरीर छोड़ता है, चलो हम बहुत रोते हैं, पर किसके साथ प्यार था, आत्मा से या शरीर से? कोई कई शरीर से, तो शरीर से प्यार था तो रख दो ना उसके शरीर को, रख सकते हैं। पंच तत्वों को तो पंच तत्वों में वापस भेजना ही है। अच्छा आत्मा से प्यार था तो आत्मा से प्यार की निशानी क्या है? अब वो आत्मा वापस तो आएगी नहीं, शरीर तो खत्म हो गया, और अगर आत्मा आई भी तो भूत के रूप में ही आएगी ना, अगर आई तो। तो आत्मा से अगर सचमुच प्यार है तो उसका प्रमाण क्या है? आप यही चाहेंगे कि ये आत्मा जहां भी गई उसको शांति मिले, ये आत्मा से प्यार की निशानी है। आप उसकी अशांति तो नहीं चाहेंगे ना, ये प्यार है कि आप उसको शांति मिले। तो अगर ये सच्चा प्यार है कि उसको शांति मिले, तो आप अशांत होकर उसको शांति दे सकते हो क्या? आप खुद अशांत हो और उसको उसके लिए कहो कि उसको शांति मिले, तो कैसे आपके द्वारा उसको शांति मिलेगी? अगर आप उसकी उससे सच्चा प्यार है और उसकी शांति की कामना करते हैं तो आपको भी शांति में रहना होगा, तब आपकी शांति के वाइब्रेशंस उस आत्मा को मिलेंगे। अगर आप तड़पेंगे, आप दुखी होंगे, आप रोते रहेंगे, वो आत्मा भी जहां जाएगी वो भी तड़पती रहेगी। तो आपका तो उसे प्यार है तो ये तो तड़पाया, और ही तो सच्चा प्यार कहां हुआ? और हम क्या समझते हैं, रोएंगे नहीं तो लोग सोचेंगे शायद प्यार नहीं था, कितना अंतर हो गया। तो जबरदस्ती भी रुलाते हैं या कई जबरदस्ती भी रोते हैं, भले न भी रोना आए तो भी रोना रोते हैं। तो देखिए ये प्यार का स्वरूप है, क्योंकि तीसरा आधार है प्रेम। जहां प्यार होगा प्रेम होगा वहां तो मन जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? और अगर हमारा सच्चा प्रेम ईश्वर से हो तो सबसे प्रेम होगा, केवल एक से थोड़ी होगा। जैसे पेड़ को पानी देना है तो हम पत्ते पत्ते को थोड़ी देंगे, क्या करेंगे, जड़ को देंगे। कोई कहे मेरा सबसे प्यार है तो कैसे पता चले सबसे प्यार है? जब ईश्वर से प्यार है, ईश्वर से प्यार है तो उसकी रचना से भी प्यार है, जरूर, क्यों नहीं प्यार है? ये तो नहीं कहेंगे मेरा सबसे प्यार है पर इसके साथ नहीं है, और ये भी नहीं कहेंगे कि मुझे कोई नहीं पसंद, केवल यही पसंद बस, नहीं, सबसे प्रेम। सब आत्माएं हैं, एक पिता की संतान है, वसुधैव कुटुंबकम है। इसलिए आपका लक्ष्य है इस कॉन्फ्रेंस का या सम्मेलन का, एक विश्व परिवार। तो इसके लिए दृष्टि को ही बदलना पड़ेगा, पर वो तब बदलेगा जब हमारी मन की आंख उस परमात्मा को देखेगी, उनसे सच्ची प्रीत करेगी। तो इसलिए मन को कहीं भी जाने का तीसरा आधार होता है प्यार। जहां प्यार मिलता है वहां मन जाता है, जिससे नफरत मिलती है, घृणा मिलती है, हाँ, या बुरी या अपशब्द मिलते हैं हम उनसे दूर कहोगे, क्योंकि लव अट्रैक्ट्स लव। आप प्यार दो तो आपको प्यार मिले, आप देंगे तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? आप जो देंगे वो ही आपको रिटर्न होके मिलेगा, और हम सब प्यार चाहते हैं। तो परमात्मा से ही अगर सच्चा प्यार हो तो सारे विश्व से ही हमको प्यार हो जाएगा। पर वो प्यार कैसे जुड़े, वो संबंध कैसे जुड़े जो आज टूट चुका है, उसकी विधि क्या है, वो प्रेम को बढ़ाने की विधि क्या है, ये बताएंगे। चौथा, जहां से प्राप्ति होती है ना वहीं मन जाता है, प्राप्ति जहां से होती है। अब सर्व प्राप्ति मुझे ईश्वर से मिल रही है तो मन और कहां जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। अब ये चार मूल आधार है मन को परमात्मा में लगाने के लिए, परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति। अब हम इसको और आगे देखेंगे कि आत्मा और परमात्मा का जैसे ही परिचय मिला मन लगना शुरू हो जाएगा। एक छोटे बच्चे को कहो ये तेरे पप्पा है, ये तेरे मम्मी है, तेरा भाई है, तेरी बहन है, बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं, पैदा हुआ उसको क्या पता कौन मेरा क्या संबंधी है। तो जैसे ही परिचय बच्चे को दिया तो उसको याद करना शुरू करेगा। अब आत्मा को परमात्मा का परिचय भी कौन दे, माँ ही तो बच्चे को जैसे परिचय देती है ये तेरे डैडी हैं, क्योंकि पहले तो वो माँ का ही स्पर्श मिलता है बच्चे को। तो इसीलिए माँ परिचय सबका देगी और तब बच्चे को समझ में आएगा कि ये कौन है, मेरा फलाना है। अब आत्मा का भी परिचय कौन दे, परमात्मा के सिवाय कोई नहीं दे सकता। आज हम खुद को ही भूल गए, ईश्वर को भी भूल गए, भूल ही गए, इस भूल भुलैया में फंस गए, देह समझने लगे अपने आप को, घर को भी भूल गए। अब परमात्मा ने अपनी पहचान खुद दी है कि मैं कौन हूं, कैसे दी है वो हम आज शाम को आपको बताएंगे, आज जो शाम का विषय है। लेकिन क्या परिचय दिया है परमात्मा ने अपना और हमारा, वो आपको कल मिला। अब जहां परिचय मिला तो ऑटोमेटिकली मन हमारा परमात्मा में जा सकता है। संबंध जो टूट गया है उसको जोड़ना है। अब कैसे संबंध को जोड़ेंगे, जैसे देखो यहाँ बिजली जल रही है, लाइट, पंखा, ये सब चल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अचानक अंधेरा हो जाए, मान लो सब बंद हो जाए, अब कहेंगे क्या हो गया, क्या हो गया। हाँ, सबको थोड़ा संकोच होगा, घबराहट होगी, क्योंकि बिजली का कनेक्शन कट गया, पावर हाउस से कनेक्शन कट गया। फिर देखते हैं कि अभी क्यों अंधेरा है, दूसरे हॉल में तो लाइट है, यहाँ क्यों नहीं है। तो फिर जो इसका मेन मीटर होगा वहां जाके चेकिंग करेंगे, भाई कहाँ फ्यूज तो नहीं उड़ गया, क्योंकि बाकी तो जगह बिजली है, बिजली घर से तो बिजली आ रही है, पर यहाँ क्यों नहीं है। तो मीटर देखेंगे, फिर उसमें फ्यूज हो गई है, वायर शॉर्ट सर्किट कहीं हो गया, कुछ हो गया, तो फ्यूज को कैसे फिर जोड़ते हैं, उसकी विधि क्या होती है फ्यूज को जोड़ने के लिए, कॉपर टू कॉपर, यानी जो बाहर की तार है रबर की उसको हटाना पड़ता है, अंदर की तार जो तांबे की है वो तांबे के साथ जोड़ना पड़ता है, वो टूट गया है। रबर के साथ ही जोड़ देंगे तो भी करंट पास नहीं होगा, वो रबर जो है वो बैड कंडक्टर है, उससे शक्ति में रुकावट आएगी, इसलिए रबर को हटाना पड़ता है। तांबे को तांबे से जोड़ो तो करंट पास होगा। कोई रेडियो स्टेशन चाहिए तो ट्यूनिंग करनी पड़ती है, बिना ट्यूनिंग किए आप दिन भर खाली बस वही घुमाते रहो, नहीं मिलने वाला है रेडियो स्टेशन। वही मीटर बैंड, वही फ्रीक्वेंसी, वही वेवलेंथ आपको पता है तो वहां आपने रेडियो की सुई रखी, वो आपका रेडियो रिसीवर कैच करेगा। अब परमात्मा से संबंध जोड़ने की विधि क्या होगी, ये दे अभिमान रूपी रबर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा तो ज्योति स्वरूप है और आत्मा भी वास्तव में ज्योति स्वरूप है। देहधारी होगा उसका पिता देहधारी है, आत्मा का पिता तो परमात्मा है, पर वो भी एक आत्मा है पर परम है। किस आधार से परम है, परम का मतलब ये नहीं कि कोई बड़ी साइज वाला है, परम माना ज्ञान में, गुणों में, शक्तियों में, कर्तव्यों में परम है और सबसे न्यारा है, सबसे ऊंचा है। पर है तो वो भी एक आत्मा, एक ज्योति, प्रकाश का पुंज। अब ये जब तक देह अभिमान न टूटे तब तक मन परमात्मा में नहीं लगेगा, क्योंकि ये देह अभिमान एक विघ्न रूप बन जाता है, ये रुकावट है। इसलिए राजयोग में हम सबसे पहले देह अभिमान को तोड़ते हैं। और उसके लिए क्या सोचना है, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक ज्योति हूं, मैं प्रकाश का पुंज हूं, मैं चमकता हुआ एक सितारा हूं, इस सृष्टि पर मैं मेहमान हूं, ये शरीर मेरा एक वस्त्र है, ये संसार एक रंग मंच है। तो जैसे जैसे ये चिंतन करते जाएंगे, ये देह अभिमान जो आत्मा को घेरे हुए हैं, उसको जकड़े हुए हैं, वो धीरे धीरे टूटेगा और आत्मा की स्थिति आएगी। फिर आत्मा समझ ही परमात्मा को याद करना है, क्यों? तो राजयोग की परिभाषा क्या है, राजयोग की परिभाषा बहुत ऊंची है, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा की यथार्थ स्मृति, ये राजयोग है। क्या है राजयोग? आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा की यथार्थ स्मृति राजयोग है। स्मृति है तो यथार्थ स्मृति, और स्मृति के लिए आधार है मन, मन ही तो याद करता है, स्मृति माने याद। तो उसके लिए मन को कैसे हम शक्तिशाली बनाएं, क्योंकि मन का भोजन है विचार। तो एक ही विचार हम नहीं करते, मान लीजिए जैसे किसी को मंत्र मिलता है ओम नमो शिवाय का, कई लोग हमको भी कहते बेन जी बस एक मंत्र दे दो ना हम जाप करते रहेंगे, हम कहते नहीं, ये यहाँ मंत्र इस प्रकार का है ही नहीं। मंत्र का भी अर्थ होता है, मंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, अगर मंत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ ले, जैसे योग का शाब्दिक अर्थ जहां से योग शब्द है वो युज है, जोड़ना, तो मंत्र शब्द कहां से आया, ये भी संस्कृत का शब्द है, ये शब्द आया है मंत्रणा से, मंत्रणा कोई राय कोई सलाह, मंत्रणा जो देता है जो वो मंत्री, और जो मंत्रणा दी वो मंत्र, इसलिए कान में डालते हैं, कान में मंत्र माना कोई राय दो, भी राय दो सलाह दो, तो मंत्र माना मन को बुद्धि के द्वारा कोई राय मिलती रहे, सलाह मिलती रहे, दिशा मिलती रहे। और दूसरा अर्थ होता है मन प्लस त्र इक्वल टू मंत्र, मंत्र माना वो विधि वो तरीका जिससे मन तृप्त हो जाए, त्राण मिले, संतुष्टता आए, भरपूरता आए, संतोष आए, वो क्या है। मान लीजिए आज हम किसको मंत्र ही दे दिया ओम नमो शिवाय, अब वो उसको कहा ये जाप करो, पर जब तक उसको ये नहीं बताया कि ओम नमो शिवाय का अर्थ क्या है, तो भले जाप करता रहेगा वो मैकेनिकल प्रोसेस बन जाएगा। पर ओम नमो शिवाय का अर्थ क्या है, मैं शिव को नमस्कार कर रहा हूं, ये है इसका अर्थ। ओम माना मैं आत्मा उस शिव को नमस्कार कर रहा हूं। अब ये मंत्र सार्थक तब होगा जब पहले ये पता हो कि ये मैं कहने वाला कौन। अगर देह अभिमान में हूं तो चाहे कितना भी आप मंत्र जाप कर लो, मन तो भटकेगा, केवल मुख को काम मिलेगा। तो मैं आत्मा हूं ये भी तो चिंतन साथ में चाहिए। फिर जिस शिव को मैं नमस्कार कर रहा हूं वो शिव कौन है, वो कहाँ है, क्या संबंध है मेरा उनसे, क्योंकि संबंध होगा तो मन जाएगा, क्या प्राप्ति मुझे उनसे होनी है, कितना प्रेम मेरा है उनके साथ, तभी तो मन जाएगा। और फिर नमः तब होगा जब नमस्कार करने लिए नम्रता चाहिए। अगर अभिमान में होगा ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय कहा तो क्या बड़ी बात है, नम्रता तो है ही नहीं, अभिमानवश तो मंत्र नहीं सार्थक होगा ना, बड़ी नम्रता चाहिए। हम कौन है, किसके बच्चे हैं, बच्चा हूं मैं, परमात्मा मेरा पिता है। इसीलिए राजयोग में हम कोई मंत्र नहीं देते, लेकिन जो संबंध टूट चुका है उस संबंध को जोड़ने की विधि बताते हैं। कैसे संबंध जोड़ेंगे, कोई समानता चाहिए तब संबंध जुड़ेगा, बिना समानता के संबंध नहीं जुड़ता है। इसीलिए बताया था कल कि एक कुमार कुमारी की सगाई करनी है तो भी ज्योतिषी से पूछेंगे, जरा देखो योग है तो योग होने लिए समानता चाहिए, ग्रह मिलने चाहिए, संस्कार मिलने चाहिए, विचार मिलने चाहिए। अगर ये मिलते नहीं है, ये सब नहीं देखते तो शादी कामयाब होगी कहाँ होगी? विचार एक जैसे चाहिए और विचारों में एकदम टक्कर ही है, ग्रह ही नहीं मिलते हैं, सोच मिलती ही नहीं है उनकी, संस्कार मिलते ही नहीं है, तो संबंध बहुत समय नहीं चलेगा। इसीलिए आत्मा का परमात्मा से जो संबंध है उसमें कुछ समानता है, अब वो समानता का चिंतन आकर्षण करेगा, समानता का चिंतन का आकर्षण होगा जरूर। अब तक समानता का तो चिंतन था ही नहीं, हमने तो कितना कॉन्ट्रास्ट समझ लिया, परमात्मा तो बहुत पावन है और मैं तो पतित हूं, वो तो नाम रूप से न्यारा है और मैं तो फलाना नाम रूप धर्म जाति वाला, कहां वो तो बिल्कुल कुछ कोई नाम रूप धाम कुछ भी नहीं और बाकी मैं सब कुछ, कैसे कनेक्शन होगा? संबंध के लिए समानता चाहिए, ट्यूनिंग के लिए सेम फ्रीक्वेंसी मीटर बैंड वेवलेंथ पर लाना होगा। अब तो राजयोग से हमें उस समानता का पता चलता है, मैं आत्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप, परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप, दोनों का स्वरूप एक जैसा है। दुनिया में भी देखेंगे इंसान का बच्चा इंसान ही तो होगा। एक चुटकुला सुनाते, किसी पिता ने अपने बेटे को कहा चल गधा कहीं का, है ना, कुछ ऐसी शरारत की होगी, चल गधा कहीं का, या उसको कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो बेटे ने कहा ठीक है पिताजी मैं गधा तो मेरा बाप कौन मेरा बाप कौन, बाप ही बोल रहा है बेटे को गधा कहीं का, तो बेटा गधा है तो बाप क्या होगा, वो इंसान होगा क्या? इंसान गधे को पैदा करेगा क्या? माने हम मुख से क्या कहते हैं वही हम कई बार नहीं समझते हैं क्या कह रहे हैं। तो इसीलिए जब हम आत्मा हैं तो आत्मा का पिता परमात्मा, तो वो भी तो एक आत्मा ही तो है, तो रूप में दोनों समान है। आत्मा का परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए पता नहीं चलेगा ये आत्मा का हुआ या परमात्मा का हुआ, सब आत्मा ही ज्योति स्वरूप है, परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, पर परम ज्योति है वो, ज्ञान गुण शक्ति कर्तव्यों में परम है। जैसे चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर वो भी मिनिस्टर ही तो है, एमपी तो सारे ही है, एमएलए सारे हैं, परंतु कोई उसमें चीफ मिनिस्टर बना, एमपी सब है पर उसमें कोई मिनिस्टर पर प्राइम मिनिस्टर बना। इसीलिए परमात्मा भी एक आत्मा है पर उनका पार्ट सबसे अलग है, इसलिए कहते ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा धाम ऊंचा तेरा हर काम ऊंचे से ऊंचा भगवान। ईश्वर की गतमत सबसे न्यारी, जितना ही वो ऊंचा है सबसे उतना ही वो सबसे न्यारा है, पर है तो वही आप जैसा आत्मा का स्वरूप परमात्मा का वैसा ही स्वरूप है। फिर दोनों का धाम भी एक ही है, हम एक ही घर के वासी हैं, इसलिए तो कहते हैं भगवान के घर से आए हैं भगवान के घर जाना है, ये शरीर के लिए थोड़ी कहते हैं, आत्मा उसी घर की वासी है, जो पिता का घर है बच्चे का घर भी तो वही होगा। फिर तीसरा गुण भी एक जैसे ही है, इसीलिए कई समय से आत्मा जो है ना परमात्मा का अंश है, क्योंकि गुणवत्ता वही है पर अंश का अर्थ पे दूसरा ले लिया, कि अंश का मतलब है कि जिसका टुकड़ा, हम उसके टुकड़े नहीं है, आत्मा भी अनादि अविनाशी है, जितनी आत्माएं हैं सब अनादि अविनाशी है और परमात्मा भी एक आत्मा ही है वो भी अनादि अविनाशी है, इसीलिए कोई टुकड़े की बात नहीं है, गुणवत्ता वही है, जो परमात्मा के गुण है आत्मा के भी वही गुण है। हाँ संख्या में अंतर है, क्वालिटी में अंतर नहीं है, क्वांटिटी में अंतर जरूर है। परमात्मा की महिमा हम सागर से करते हैं, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, और आत्मा के लिए कहेंगे शांति स्वरूप प्रेम स्वरूप, जो ईश्वर के गुण है वो मेरे अंदर भी हैं, मैं भी वही स्वरूप हूं। इसीलिए कई कह देते आप हर एक के अंदर ईश्वर का वास है, तो ईश्वर का वास माना जो परमात्मा के गुण है वो आत्मा के भी तो गुण है ना, पर ईश्वर का वास का अर्थ अलग ले लिया कि वो सब जगह वो ईश्वर है, वो ही कर रहा है सब कुछ, वो ही कर रहा है, तो फिर भोगे भी वो ही ना, हम क्यों भोगे। नहीं, आत्मा करता है, आत्मा ही कर्म करती, आत्मा ही फल पाती है। इसलिए आत्मा के लिए कहेंगे कि आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु है, क्योंकि कर्म अनुसार उसको फल मिलेगा, अपना ही शत्रु बन जाती है। लेकिन परमात्मा तो सदा ही परम मित्र है, वो कभी हमें दुख नहीं देगा, वो तो सुख का सागर है। उनकी याद से आत्मा को सुख ही मिलना चाहिए। तो इसीलिए दोनों के गुण भी समान, घर भी समान, स्वरूप भी समान। अब ये चिंतन मन में लाने से कनेक्शन जुड़ेगा, ये उसकी विधि हो गई। इसीलिए पहला पहला चिंतन क्या करना है कि मैं एक आत्मा हूं, ये पहला चिंतन है। इस शरीर के भान को भुलाना होगा, ये तो वस्त्र है ना, जैसे शरीर पर वस्त्र पड़े हैं ये अलग है। एक्टर कोई भी उस मंच पर जाएगा तो उस अनुसार रोल अनुसार वस्त्र पहनेगा, पर जब रोल पूरा हुआ, कितने देखो कल भी जो मेन बहन थी ना, क्या नाम था उसका, सिमरन, तो वो अभी देखो एक ड्रेस पहन के अभी दूसरी ड्रेस पहन के आई, फिर कई तीसरी ड्रेस पहन के, तो ड्रेस तो बदलते रहेंगे, पर वो एक्ट्रेस तो वो जो पाठधारी तो वही आइडेंटिटी वही है। इसी प्रकार आत्मा ने ये देह रूपी चोला धारण किया, अब मैं चाहूं तो जैसे ये वस्त्र मेरे से डिटैचेबल है, ये शरीर रूपी वस्त्र भी आत्मा से डिटैचेबल है। तो जैसे हम अभ्यास शुरू करते ये देह को अपने से न्यारा करना है, और उसके लिए फोकस क्या करते, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा भ्रकुटी के मध्य विराजमान, इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं। जैसे कई जो आसन करते ना, कई आसन करने के बाद जो लास्ट का जो आसन होता है वो शवासन होता है। शवासन में क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन पॉस्चर है वो, मैं पैर नहीं हूं, मैं टांगे नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये नहीं, फिर यहां तक आते हैं, और यहां आकर के वो आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करते, कोई कुंडलिनी जागृति समझते भाई ये इनको इनसे ऊपर जाते हैं। परंतु राजयोग में हम यहां से आरंभ करते हैं, हम आरंभ यहां से करते हैं। अब यहां से आरंभ करके अपनी एनर्जी को बॉडी के अंगों को देना है, क्योंकि यहां से एनर्जी जाती है, ये मेरा कंट्रोल रूम है। तो ये इंद्रियों को मैं अपने वश में रख सकती हूं, क्योंकि मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूं। अभी नहीं देखना है, आंखें तो है, खिड़की है, नहीं देखना है तो ना देखूं, मेरे हाथ में है, इस मुख से बोल रही हूं, शक्ति यहां से आ रही है, नहीं बोलना है, आत्मा कंट्रोलर है, मुख को बंद रख सकती है, इन हाथों को कंट्रोल कर सकती है। यही हाथ आशीर्वाद भी देते हैं, यही हाथ किसको थप्पड़ भी मारते हैं, इसमें हाथों का दोष नहीं है। तो आशीर्वाद दे या थप्पड़ मारे ये निर्णय कौन करेगा है? ये तो आत्मा करेगी ना, तो बुद्धि आत्मा में है। तो मैं वो आत्मा हूं, इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं, इस शरीर की इंद्रियों द्वारा कर्म करने वाली शक्ति। अब मैं न्यारा बन सकता हूं एक सेकेंड में। एक कछुए में भी इतनी अकल है कि जब देखता है कुछ प्रोटेक्शन की कमी, कुछ बाहर कुछ ऐसा विघ्न है, अपने हाथ पैर अंदर ले लेता है। एक कछुए में भी इतनी तो अकल है ना, हाथ पैर अंदर लेने की, अपनी रक्षा करने की। तो मैं आत्मा एक न्यारी शक्ति हूं, इस देह से अलग हूं। एक इतना सुंदर ये चिंतन है जो सहज ही हम देह से न्यारे हो जाते, एक सेकंड में मन शांत हो सकता है। और जैसे मैंने अपने आप को एक आत्मा निश्चय किया, तो आत्मा कैसी हूं मैं, ये आत्मा को महसूस होता है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शुद्ध स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। ये चिंतन बुद्धि द्वारा मन को दो, बुद्धि को एक्टिवेट करो, अंतरात्मा की आवाज को सुनो और वो मन को चिंतन दे। ये है मंत्र, मन को त्राण देने के लिए चिंतन कि मैं कैसी आत्मा हूं, वो स्वमान में आओ, अवेकन योर सेल्फ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति मुझे बाहर से नहीं मिलेगी, वो मेरे पास ही है। मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। वो अंदर से ही शक्ति आएगी, कोई बाहर की बात नहीं है। वो विल पावर अंदर से आती है, क्योंकि बुद्धि को अंतरात्मा की आवाज को एक्टिवेट किया और वो मन को चिंतन देती है, शक्ति अंदर से आ जाती है। अब जैसे मैंने आत्मा के गुणों का चिंतन किया, फिर आत्मा के धाम का चिंतन करो, मैं कहां का वासी हूं। तो एक सेकंड में मन और बुद्धि को इस देह और देह की दुनिया से उपराम उस अखंड ज्योति के महतत्व को याद करो। आत्मा तो पंछी है, एक सेकंड में मन बुद्धि से वहां चली जा सकती है। जैसे एक मिसाल देते हैं ना कि एक कबूतर वो बिल्ली को देख के डर जाता है, घबरा जाता है बिल्ली को देख के, और आंखें बंद कर देता है बिल्ली, क्योंकि देखेगा नहीं तो डरेगा नहीं, इसलिए आंखें बंद कर देता है। पर आंखें क्यों बंद करते हो? कबूतर उस समय वो भूल जाता है कि उसको पंख है, वो बिल्ली को देखकर डर जाता है, पंख का यूज नहीं करता और घबरा जाता है और बिल्ली उसको पकड़ भी लेती है, पता भी नहीं चलता बंद कबूतर को, क्योंकि आंखें बंद है उसकी। लेकिन आंखें खुली भी रहे और उड़ जाए तो बिल्ली तो उड़ेगी नहीं ना, वो उसको तो पंख नहीं है। तो मेरे सामने कोई परिस्थिति आई, कोई विघ्न आया, कोई ऐसी बात आ गई बहुत परेशान करने वाली, उसी समय मेडिटेशन कर सकते, एक सेकेंड में मन और बुद्धि से उड़ जाओ, न्यारे हो जाओ, पहले अंदर की तरफ इनवर्ड जर्नी, फिर अपवर्ड जर्नी। मन बुद्धि आपके पंख हैं और आप उस परम धाम में मन की आंख से खुद को देखो कि मैं एक आत्मा परमात्मा के सम्मुख हूं। चलो वो सेकंड स्टेप है, पर मैं आत्मा उस बेहद की दुनिया में सब बंधनों से मुक्त हूं, तो घबराहट खत्म हो जाएगी। मेरा कुछ नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है। जहां मेरा आता है ना, वहां पर पोजेसिवनेस आती है, अधिकार आता है, छोड़ नहीं सकते, भूल नहीं सकते, मन उपराम नहीं हो जाता क्योंकि मेरा आता है। अब मेरा कुछ नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूं। कई बार कल बताया ना कि कई कहते भाई भगवान बस मैं बहुत दुखी हो गया, बस उठा लो मुझे इस दुनिया से। क्यों दुखी हो करके भगवान को कहते उठाओ, मन से चले जाओ ना। इतनी शांति का आपको अनुभव होगा, क्योंकि वो आत्मा का धाम शांति का धाम है। एक सेकंड में मन इतना शांत हो जाएगा, क्योंकि वो बेहद की दुनिया का आपको आभास होगा और ये एक कवच आपके सामने आ जाएगा, वो बाहर की चीज आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्योंकि आप अपनी दूसरी दुनिया में हो। इसीलिए मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, शांति धाम का वासी हूं, ये जैसे ही संकल्प किया, शांति तो मेरे पास ही है, मेरी चारों ओर शांति है, क्योंकि मैं शांति धाम में हूं, मेरा अपना स्वभाव ही शांति है। अब जैसे मन से ये संकल्प किया, उसके बाद फिर मन की आंख परमात्मा को देखे, जो रूप में ज्योति बिंदु है और गुणों में सिंधु के समान बेअंत है, मेरे जैसा ही है, वही गुण है, वैसा ही स्वरूप है, उसी धाम का वासी हूं मैं, परमात्मा भी उसी धाम का वासी है, वो शांति का सागर है और मैं आत्मा उसकी संतान शांत स्वरूप हूं। इसलिए तीन बार शांति कहते हैं, ओम शांति शांति शांति, तीन बार क्यों कहते हैं? शांति पाठ के अंत में तीन बार शांति शब्द यूज होता है, अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप, मेरा धाम शांति का धाम और मेरा पिता शांति का सागर। तो जिसका अपना स्वभाव ही शांति है, जिसका धाम शांति का धाम है, जिसका पिता शांति का सागर है, वो अशांत हो सकता है? हो सकता है? अगर होता है तो ये उसका अज्ञान है। जैसे किसी के नाम पर बहुत बैंक बैलेंस है, बहुत उसको जमीन है, उसका पिता भी करोड़पति है और वो कहे मैं तो कंगाल हूं, ऐसे को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? हाँ, मूर्ख, उसको पता ही नहीं है। तो मैं कौन हूं, मैं कहां का वासी हूं, किसका बच्चा हूं, ये आत्मा को स्वमान पैदा हो। तो वो जो अभिमान है दुनिया का, ये अज्ञान है, उसको हम दूर कर सकते हैं। स्वमान में आ जाओ, मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति धाम का वासी, शांति के सागर पिता परमात्मा की संतान। और जैसे मैंने ये संकल्प किया तो उस शांति के सागर पिता परमात्मा को उस शांति के धाम में देखूं। जैसे आप किसी को याद करते हो तो बैकग्राउंड चित्र भी तो बनाते हो ना। आजकल तो क्या पता नहीं चलता है, जैसे किसी को फोन पर आप बात करते हो, पहले तो चलो लैंडलाइन था तो वो दफ्तर का फोन है, घर का फोन है, पर दुकान का फोन है, पता था। तो आजकल तो मोबाइल है, तो सबसे पहला प्रश्न उनसे यही पूछेंगे, आप कहाँ हो? पूछते ना कहाँ हो, क्योंकि पता ही नहीं कहाँ है, क्योंकि ये तो मोबाइल है, कहाँ भी हाथ में है उसके। इसलिए उसका जो उसको याद करना है तो कहाँ हो पहले पूछेंगे, तो उसका बैकग्राउंड भी तो याद आ जाए, दुकान में है, दफ्तर में है या घर में है, तीनों ही जगह वही टेलीफोन चल सकता है। तो बैकग्राउंड तैयार करना पड़ता उसको याद करने के लिए। आत्मा परमात्मा को याद करने लिए क्या बैकग्राउंड तैयार करे? मैं कहाँ का वासी हूँ, मेरे पिता कहाँ के वासी है? मन बुद्धि से चले जाओ उस धाम में। इसमें कई कहते क्या मैं इमेजिन करूं, कल्पना करूं? हम कहते कल्पना शब्द मत यूज करो, याद शब्द यूज करो। कई बार हम कहते कि भी हमने वो स्थान देखा नहीं, पर फोटो तो चलो देखा है ना, तो भी याद कर सकते हो। बेटा आपका अमेरिका में है, आपको फोटो भेजता है, मेरा ये अपार्टमेंट है, मेरा ये कॉलेज है, मेरा ये है, मैं कितने फोटो भेजता है, तो भी आप उसको याद कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो चलो हमने इन आंखों से तो वैसे उस घर को देख नहीं सकते, पर आप कहेंगे देखा नहीं, हम कहेंगे क्यों नहीं देखा, उसी घर से ही तो आए हो आप। तभी तो जब जब मन अशांत होता है, हे भगवान बुला लो मुझे अपने पास, जैसे होम सिक हो जाते, घर बहुत याद आता है। तो आत्मा उस मन से परमात्मा के पास पहुंच जाए ना उस धाम में, एक सेकंड भी नहीं लगेगा, और ऐसे महसूस करे अखंड ज्योति के एक महतत्व में मैं एक चमकता हुआ सितारा विराजमान हूं उस परमात्मा के सामने, जो गुणों में स्वरूप में समान है, आकर्षण होगा, तब योग लग सकेगा। और फिर हम उसके बाद उनसे बातें करें, भगवान से बातें करो। बातें करते हैं भगवान से? करते हैं या नहीं करते हैं? जो करते हैं हाथ उठाओ, भगवान से जो बातें करते हैं। अच्छा, कई सब नहीं उठा रहे हैं, माना नहीं करते हैं भगवान से बातें। जो नहीं उठा रहे हैं माना क्या विचार है? नहीं करते भगवान से बातें हैं? ये हाथ नहीं उठा रहे हैं, नहीं करते हैं? कहते पता ही नहीं क्या होता है भगवान से बातें करना। इंसान से तो खूब बातें करते हैं, भगवान से बात नहीं करते हैं? हम कहते जरूर करते हैं। जब कोई चीज चाहिए, हे भगवान ये दो, तो भगवान से बात ही तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो कैसे कहते हो नहीं करते हैं? कोई चीज चाहिए और भगवान से वो मांगते हो तो ये बात ही तो कर रहे हो भगवान से। कई कहते नहीं, मैं भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता, बस भगवान की दया से सब कुछ है मेरे पास, ईश्वर की दया है मेरे पास, सब कुछ है। हम कहते चलो कोई वस्तु नहीं मांगते होंगे, पर शांति तो मांगते हो कि नहीं मांगते हो? हे भगवान बस शांति दो। कई ये कहते भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है, अगर मैं भगवान से कुछ मांगता भी हूं, यही कहता, हे भगवान शांति दो, शक्ति दो। कई कहते नहीं, वो भी मेरे पास सब है, तो फिर कुछ भी कुछ तो मांगते हो? कहते बस कभी कभी भूल हो जाती है, तो भगवान को कहता हूं भगवान माफ कर दो, इतना कहता हूं कई बार। अब हम कहते हैं राजयोग में हम मांगते ही नहीं है कुछ भी, तो फिर कई कहते फिर क्या भगवान से बातें करते अगर मांगते ही नहीं है, क्योंकि मांगना ही भगवान से बात करना समझते हैं। कुछ मांगना है तभी भगवान से बातें होती है क्या, और कभी बातें कुछ होती ही नहीं है क्या? ये तो स्वार्थ हो गया कि कुछ मांगना है तभी भगवान को याद करना है। स्टूडेंट की पढ़ाई के एग्जाम से नजदीक है तब मंदिर में जाएगा, भगवान तो मुझे पास कर देना, फिर उसको भी तो थोड़ी लालच देनी है भगवान पास शायद न करे, हे भगवान तो मुझे पास करोगे ना तो मैं 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा। तो भगवान मेरे प्रसाद का भूखा है क्या, जो मेरे 100 रुपए मिलेंगे तभी उसको भोजन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो तो अभोक्ता है, उसको क्या प्रसाद की जरूरत। तो हम भगवान से कई बार सौदा भी करते हैं, भगवान तुम ये मेरा काम करोगे ना तो देखना मैं ये करूंगा तुम्हारे लिए, और नहीं किया तो हे भगवान तुम्हारे जैसा निर्दयी कोई नहीं, हे भगवान तुमने मुझे धोखा दिया, हे भगवान मैंने तुम्हारे आश्रय पर ये सोचा था। तो किया तो भगवान को धन्यवाद भी नहीं करते हैं, और नहीं किया तो खूब गालियां भी देते हैं। ऐसे ये संबंध है ईश्वर के साथ, ऐसा संबंध है। अब राजयोग में हम कहते हैं ये सच्चा संबंध नहीं है, जहां प्यार होता है वहां तो न्योछावर होना होता है, मांगना थोड़ी होता है, मांगना थोड़ी होता है। अगर एक पति पत्नी के बीच में पत्नी सारा समय पति से मांगती रहे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, ये कोई प्यार है क्या? खाली स्वार्थ ही तो है, वन साइड थोड़ी होता है, कुछ त्याग भी तो चाहिए, कुछ समर्पण मयता भी तो चाहिए। इसीलिए हम आज तक जो संबंध ईश्वर से जोड़ते आए थे उसमें सोचा था केवल मांगना ही होता है, अब राजयोग में मांगना बंद, तो कहते फिर क्या भगवान से बातें करें। हम कहते भगवान से आप मांगो कुछ नहीं, पर जो आपके पास है वो किसने दिया है, किसने दिया है? हाँ, ईश्वर ने दिया है, तो उसका धन्यवाद करते हो, धन्यवाद करते हो। दुनिया में इतने लोग हैं जिनको ये भी नसीब नहीं है जो आपके पास है, तो आपके पास तो बहुत कुछ है और उनका दिया हुआ है, तो कहां उसको दिल से धन्यवाद करते हो, तो स्वार्थी हो गए ना। इसीलिए राजयोग में हम कभी भी कुछ मांगते नहीं है, क्योंकि हम अंदर में यही जानते हैं ये सब उनका दिया हुआ है। आरती में हम लोग क्या गाते हैं, ये तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वो केवल आरती के समय सब कुछ तेरा और बाकी समय सब कुछ मेरा है, ऐसा तेरा भी मेरा मेरे हाथ न लगा, ऐसे ऐसे भी कई लोग हैं। गुरु नानक के लिए दिखाते ना कि वो हिसाब कर रहा था, वजन डाल रहा था, तो 10, 11, 12, 13 जैसे आया, मैं 13 हो गया 13। तो ये जो कुछ है ये सब तेरा है ना, मैं तेरा हूं तो सबको तेरा है ना, फिर बाकी मेरा कहां से आया जो मैं मांगू कुछ भी ईश्वर से। इसीलिए मांगने की जरूरत नहीं है, पर जो है वो उनका दिया हुआ है, उनकी ही अमानत है जो मैं संभाल रहा हूं। इसीलिए वो सुंदर एक कहावत है, व्हाट यू हैव इज गॉड्स गिफ्ट टू यू एंड व्हाट यू मेक ऑफ इट विल बी योर गिफ्ट टू गॉड। चाहे ईश्वर से लिया है या प्रकृति से लिया है, जो कुछ लिया है ये आप उसको कैसा बनाते वो वापस प्रकृति को ही देना है। ये संसार की कोई वस्तु आप नहीं लेके जाएंगे, तो अगर मोह रख लिया ये अमानत में ख्यानत है, ये आपकी चीज नहीं है, ये शरीर भी आपका अपना नहीं है, ये भी प्रकृति की चीज है। अगर आपका कुछ है अपना तो ये आत्मा के गुण है, यही आपके हैं, और उसको तो गंवा बैठे हैं और बाकी चीज मेरा 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 करके बैठे हैं। इसीलिए क्या बातें करो वो सुनता तो जरूर है। कई कहते हैं भगवान से बातें तो करते हैं लेकिन भगवान सुनता ही नहीं है। हम कहते क्यों नहीं सुनता है, हो सकता है कनेक्शन जुड़ा ही नहीं तो सुनेगा कैसे। आप टेलीफोन कर रहे हो, दबाया नंबर पर उस तक पहुंचा ही नहीं तो आप बोलते जा रहे हो, वो कैसे सुनेगा, कनेक्शन जुड़ा ही नहीं। कनेक्शन जोड़ने के लिए नंबर भी तो सही चाहिए ना, है? परमात्मा से नंबर जोड़ने कौन सा नंबर है जिनसे आप ईश्वर से कनेक्शन जोड़ेंगे? टेलीफोन नंबर क्या है पता है? वन। आप देखेंगे जैसे दुनिया में हम टेलीफोन करते हैं तो चलो लोकल कॉल होता है तो 8-10 नंबर जितने होते हैं, 7-8, या मोबाइल है तो 10 नंबर तो होते ही हैं, चलो आपने लोकल कॉल किया। लेकिन जब एसटीडी करना है दूसरे शहर में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 0 डालना पड़ेगा। जब तक 0 नहीं डाला तब तक वो दूसरे शहर से कैसे जुड़ेगा। इसीलिए 0 डालने से जो लोकल कॉल्स है वो सब कट जाएंगे और फिर वो नंबर वहां का जोड़ना है। लैंडलाइन में तो 0 के साथ कोड नंबर आता है, भाई दिल्ली है तो 011 करके फिर वो नंबर का। पर अब इंटरनेशनल कॉल करते हैं तो एसटीडी से आईएसडी तक जाते इंटरनेशनल कॉल के लिए दूसरा 0 भी घुमाना पड़ता है, क्योंकि दूसरा 0 घुमाएंगे तो जो भारत के कॉल्स है वो कट गए, फिर उस देश का जो कोड नंबर है वो जोड़ना पड़ेगा दूसरा 0 डालने के बाद। अमेरिका का नंबर है 1 तो 001 करो उसके बाद अमेरिका में किस शहर में, अलग अलग। अब परम धाम से कनेक्शन जोड़ना है तो 2 0 के बाद तीसरा 0 भी लगाना पड़ेगा, तभी धरती से ऊपर जाएंगे ना। परम धाम से 0 कनेक्शन जुड़ेगा फिर भले 1 लगाओ पर 3 0 तो लगाना पड़ेगा। अब ये टेलीफोन पर नहीं 3 0 जाके लगाना, पर 3 0 का मतलब है पहला 0 है मैं आत्मा हूं, तो लोकल लाइन कट। कौन सी लोकल लाइन? जो शरीर से संबंधित बातें हैं, वस्तु वैभव, एक सेकंड में कट, क्योंकि ये मेरा है ही नहीं, मैं तो आत्मा अकेली आई हूं अकेले जाना, इस संसार की न कोई वस्तु लाई न ले जाऊंगी, तो मन से ये बातें तो हट गई ना, ये थोड़ी याद आएगी। ये क्यों याद आती है? क्योंकि ये पहला 0 किया ही नहीं। फिर दूसरा 0 है परमात्मा भी बिंदु है, वो भी बिंदु है, मेरे सर्व संबंध एक के साथ हैं जो ज्योति स्वरूप है। तो दूसरा 0 लगाने से जो व्यक्ति है वो भी कट, क्योंकि ये व्यक्ति जो है वो भी इस संसार के ही है। हिसाब किताब अनुसार कई बार वस्तु वैभव याद नहीं आते पर व्यक्ति याद आते हैं। जब मरने की घड़ी आती है ना तो चीजें याद नहीं आती है, पर भाई मेरा बेटा वो अमेरिका में है, जब तक अमेरिका से आएगा नहीं तब तक प्राण तन से निकलते नहीं है क्योंकि मोह फंसा हुआ है। अब यहां दूसरा 0 माना मेरे सब संबंध एक परमात्मा से है, कितना सुंदर चिंतन है ये। तो ये देह के जो आकर्षण है देहधारियों के वो भी एक सेकंड में 0 लगाते ही बुद्धि से हटे। फिर तीसरा 0 कई बार वस्तु भी याद नहीं आती व्यक्ति भी याद नहीं आते, तीसरी चीज याद आती है पता है कौन सी? बातें। बातें मेरे साथ ऐसे हुआ था, मेरे साथ इतना धोखा मिला मुझे इतना मैं इतनी तंग हो गई थी, मैं ऐसे हो गई थी, तो वो घटनाएं वो याद आती है। अब ये घटनाओं को भी भूल जाओ क्योंकि जहां जाना है वहां उसको याद करना है। आप मोए मर गई दुनिया, तो तीसरी इस संसार की जो घटनाएं जो जीवन में घटी वो अंत में सामने आती है, उसके लिए तीसरा 0 लगाओ। तीसरा 0 कौन सा है? ये संसार एक खेल है, एक ड्रामा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो और भी अच्छा होगा। ये गीता का सार, ये वास्तव में इसको हम कहते हैं ड्रामा का राज। इस संसार में जो कुछ होता है उसके पीछे कोई राज है, कोई कल्याण है, कोई नई बात नहीं है। तो उसके लिए उसको भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है, उसको भी लगाओ जीरो, बिंदी, फुल स्टॉप, फिर एक से जोड़ो, तब जुड़ेगा। समझा? एक तो कहा, लेकिन वो एक तब जुड़े जब ये पहले तीन जीरो तो लगाओ। अब तो परमात्मा से आत्मा का कनेक्शन जुड़ जाएगा, फिर आप जो बातें चाहो करो, पर मांगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना प्रेम भरा हुआ है। तो प्रेम में मांगा नहीं जाता है, वो तो न्योछावर करना होता है। माँ का बच्चे से प्रेम है तो बेटा, हाँ, माँ थोड़ी कुछ मांगेगी, वो तो देती रहेगी। माँ बाप देते ही रहते, क्योंकि प्यार है ना बच्चों से। बच्चे भले मांगे, वो स्वार्थी होंगे, पर माँ बाप तो देते ही है। ये प्रेम का स्वरूप होता है, देने की भावना होती है, जहां प्यार होता है। इसीलिए क्या देना है? अपनी बुराइयां, और जो मिला है उसका धन्यवाद। ये प्रेम बढ़ता है। इसे प्रेम कैसे बढ़ता है किसी के साथ? जब उसके गुणों को देखते हैं, और जैसे अवगुणों को देखना शुरू किया, प्रेम कटता जाएगा, नफरत आती जाएगी। ये एक मनोविज्ञान है। तो परमात्मा से प्रेम बढ़े, इसीलिए देखो कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। ये भजन कीर्तन जो होते हैं, ये किस लिए होता है? क्योंकि ईश्वर से प्रेम बढ़े, परमात्मा की उसमें स्तुति होती है। कीर्तन माना क्या? कीर्ति, ईश्वर की कीर्ति गाना, उनकी स्तुति करना। लेकिन क्या होता है, स्तुति करते 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 फिर कुछ मांग लेते हैं, अब यहां प्रेम खत्म। उसको याद दिलाते कि तुम तो हो ही दाता ना, इसलिए मुझे दो। अब दाता को याद दिलाने की क्या जरूरत है, वो तो जानता है। इसीलिए मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है। धन्यवाद जरूर करो, उनकी स्तुति जरूर गाओ, और स्तुति गाते 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 उसमें खो जाओ। ये है सच्चा प्रेम, जिसको कहते हैं आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, उसमें खो जाओ। उनके प्रेम में खोने की बात है, न कि कोई कोई सागर है उसमें बूंद समा जाएगी। आत्मा अविनाशी, परमात्मा अविनाशी है। इसलिए बातें जरूर करो, पर कुछ मांगो नहीं। न वस्तु मांगो, उसकी जगह धन्यवाद करो। न गुण मांगो, गुण भी आपके पास ही है। मांगना क्या होगा कि प्रभु शांति दो, आप आत्मा तो हो ही शांत स्वरूप। तो वो जो गुण आत्मा का है, उसको अधिकार से परमात्मा के सानिध्य में अनुभव करो। शिव बाबा, आप शांति के सागर हो, मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूं मैं। याद करो, आप प्रेम के सागर हो, मैं आत्मा आपकी संतान प्रेम स्वरूप हूं। फिर कई कहते हैं, अच्छा माफी तो मांगे, मैंने जीवन में बहुत भूले की है। हम कहते हैं माफी मांगो फिर भूल करो, ये कौन सी बड़ी बात की आपने? चलो एक बार माफी मांगी हो गई ना, फिर बार बार माफी मांगने जाना है क्या? एक बच्चे ने भूल की और मम्मी को कहता है सॉरी, तो बार बार वही भूल करता रहेगा क्या? भगवान भी धर्मराज तो है, ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ये मत सोचो मैंने माफी मांग ली और भगवान ने माफ कर दिया, कर्म का फल तो मिलेगा ही। पर हाँ, अपने को हल्का करने लिए माफी जरूर मांगो, पर माफी मांगने के बाद फिर प्रतिज्ञा करो कि ये भूल मैं फिर नहीं करूंगा, तब शक्ति आएगी दोबारा न करने की। हम तो कई बार कहते हंसी में, देखो आरती में कहते ये विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो मंदिर में गए, विषय विकार मिटाओ पाप हरो, और बाहर आए तो कहो पाप करो। भगवान हरे और हम करें, भगवान को ही तो कहा विषय विकार मिटाओ, तो मिटाओ तो खुद तो ना करो। जो हो चुके चलो वो तो मिटाएगा, पर और करते रहेंगे और वो मिटाता रहे, मैं करता रहूं, यही काम दिया है क्या भगवान को? इसीलिए ऐसा संबंध तो नहीं है ना ईश्वर के साथ, वो तो कितना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। मैं किस रूप में उनके सामने जाऊं, कितनी पवित्र होके जाऊं ना, अशुद्ध होके थोड़ी जाऊं, मैं तो हूं ही शुद्ध स्वरूप आत्मा। तो इसलिए भगवान से क्या बातें करो इसकी बजाय कि मैं माफी केवल मांगूं, उसकी बजाय प्रतिज्ञा करके जाऊं, तब हिम्मत रखी तो परमात्मा की मदद मिलेगी। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, हिम्मत रखेंगे नहीं और मदद ही मांगते रहेंगे तो ईश्वर की मदद भी कैसे मिलेगी। एक कदम तो पहला मेरा आगे जा होना चाहिए ना। इसीलिए क्या बातें करें परमात्मा से, कॉन्वर्सेशन जरूर करो क्योंकि वो सुनता है, पर 3-0 लगाकर करो और फिर एक सिक्योरिटी की महसूसता होगी। कहते हैं जिनको राखे साइया मार सके ना कोई, परमात्मा वो रक्षक के हाथ मेरे सिर पर है। इतनी सुंदर अनुभूति आपको होगी कि वो सदा मेरे साथ है। कई लोग समझते हैं ब्रह्मा कुमारियां ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं मानती, हम कहते हैं ये भावनात्मक स्थिति तो इतनी ऊंची है कोई रखे तो देखे। हम लोग तो कहीं भी जाते कभी अपने को अकेला नहीं समझते, हमेशा कहेंगे शिव बाबा हमारे साथ है, शिव बाबा हमारे साथ है, माना उनकी छत्र छाया है हमारे सिर पर, वो रक्षक है मेरा। तो इसीलिए जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी या तूफान, हम डरे क्यों, किसी से नहीं डरेंगे, हम तो शिव शक्ति है। भगवान ने हमारा सब डर दूर कर दिया, इंसान से भी क्यों डरे, भगवान से भी क्यों डरे। कई कहते भगवान से डरते रहो, क्यों डरे, भगवान तो प्रेम का सागर है, डरे या उनसे प्रेम करें, क्या करें। इसीलिए नो फियर, गॉड डज नॉट पनिश। हम अपने कर्मों से दुखी होते, कर्म ही हमारा फल बनाते हैं। जैसा करोगे वैसा पाओगे, ईश्वर तो दाता है, देने वाला दाता छप्पर फाड़ के देता है, बिन मांगे देता है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगते मांगते भीख भी नहीं मिली, अब बिन मांगे परमात्मा सब कुछ दे रहा है। तो ये है संबंध ईश्वर के साथ, विश्वास भी तो रखो, उन जैसा बनो तो सही, उनकी आज्ञाओं पर चलो तो सही, वो सब न्योछावर कर देगा आप पर। अब ये अनुभव, वो शक्ति का अनुभव हम परमात्मा से करते हैं, और ये जब अनुभव होता है तब हम उस अनुभव में खो सकते हैं। तो राजयोग की 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है इनिशिएशन, इनिशिएट करते हैं, अपने मन में चिंतन करते हैं। फिर दूसरी स्टेज है मेडिटेशन, हम उनसे बातें करते हैं। तीसरी स्टेज है कॉन्सेंट्रेशन, उसमें एकाग्र हो जाते हैं, एक एक गुण की गहराई में जाते हैं। इसको कहा कि आत्मा परमात्मा में खो गई, समा गई, बूंद सागर में समा गई, विलीन हो गई, ये कॉन्सेंट्रेशन की अवस्था है। जैसे कोई किसके प्रेम में खो जाता है, लॉस्ट इन लव कहते हैं ना, दुनिया में तो लॉस्ट इन लव नहीं होता है, फॉल इन लव होता है, वो तो गिरते ही हैं। ईश्वर को तो दिल नहीं दिया, इंसान को दिल दिया, तो दिल दिया दर्द ही लिया है ना, और क्या किया। इंसान को दिल दिया तो एक को नहीं अनेकों को दिल दे देते, अब अनेकों को दिल दे दिया तो क्या होगा, दिल के टुकड़े हो जाएंगे ना, वो गीत है ना, दिल के टुकड़े हजार, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। अगर दिल भगवान को दे दिया तो ये दिल का कभी टुकड़ा नहीं होगा, इतना दिल मजबूत हो जाएगा आपका। अगर भगवान को देकर तो देखो, खाली कहना नहीं होता, भगवान कहां है, दिल में है, केवल कहना थोड़ी होता है, सचमुच दिल में जगह तो दो, आंखों में जगह दो। मीरा ने आंखों में जगह दी तो कृष्ण को आंखों में जगह दी, इसलिए कहती थी जहां देखती हूं गिरधर तू ही तू। हनुमान ने राम को दिल में जगह दी तो दिल फाड़ के दिखाया कि हनुमान कि राम मेरे दिल में है। पर ये कोई दिल कोई फाड़ने की बात नहीं है, पर ये तो मन की स्थिति है, इतना विश्वास हो कि शिव बाबा मेरे साथ है। और एक सेकंड में मन बुद्धि उड़ जाए इस देह की दुनिया से उस परम धाम में अखंड ज्योति के महतत्व में, मैं उस चमकता हुआ सितारा को देखूं और उसमें खो जाऊं, उनके गुणों का चिंतन करते उस गुण की गहराई में चला जाऊं, इसको हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। और फिर चौथा है रियलाइजेशन अर्थात उसकी अनुभूति। तो इनिशिएशन क्या है, जिसमें हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं, इनर जर्नी है, मैं आत्मा कहाँ हूं इस शरीर में, एक ज्योति बिंदु सितारा आत्मा भृकुटि के मध्य विराजमान इस शरीर की इंद्रियों का मालिक, शांत शुद्ध प्रेम आनंद स्वरूप। और फिर वो जैसे ही चिंतन किया मेरे चारों ओर पॉजिटिव एनर्जी वेव्स निकलेंगे। फिर मेडिटेशन अर्थात हम उस परमात्मा जो सोर्स है स्पिरिचुअल पावर का, उसके साथ सर्व संबंधों से बातें करते, एक अलग विषय है। पिता रूप में कैसे बातें करो, वो अब मैं उसका बच्चा हूं, मैं उसका वो शिक्षक है तो मैं विद्यार्थी हूँ, वो सतगुरु है तो मैं उनका शिष्य हूँ, वो मेरा दोस्त है, खुदा दोस्त है, तो दोस्त दोस्त से कैसे बातें करता है, वो मेरा साजन है, आत्मा उसकी सजनी है। परमात्मा को बच्चा भी बना सकते हैं, सती अनसुया के लिए दिखाते ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को बच्चा बना दिया। अब ये सब अलग अलग बहुत सुंदर अनुभूतियां हैं, उसके लिए तो फिर आपको सेंटर पर जाकर के अनुभव करना होगा। तो मेडिटेशन माना उस संबंध का चिंतन, सर्व संबंधों में परमात्मा को याद करना, उस बिंदु में सिंधु की शक्ति महसूस करना। और फिर हम इसमें क्या अनुभव करते हैं, जैसे मेडिटेशन इज एक्सपीरियंसिंग द कंपनी ऑफ गॉड एंड रिसीविंग हिज वर्चू वर्चू। हम ये नहीं कहते शिव बाबा हमें शांति दो, हम क्या कहेंगे, शिव बाबा आप शांति के सागर हो, मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूं मैं ना, ऐसा कि दो, वो देगा कैसे पता चलेगा, मिला भी शांति मुझे दी भगवान ने, ये कैसे पता चलेगी, उसका अनुभव करने के लिए चिंतन करना पड़ेगा ना, मैं वो हूं। फिर मेडिटेशन इज अ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, आत्मा का शुद्धिकरण होता है, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पिता परमात्मा जो पवित्रता के सागर, उनके सानिध्य में वो पवित्रता की शक्ति की अनुभूति होती है, जिसके नजदीक बैठो उसका गुण मिलता है, अग्नि के पास बैठो अग्नि का गुण मिलेगा, सेक मिलेगा, सागर के किनारे बैठो सागर की ठंडी ठंडी हवाएं मिलेगी, तो जिसका संग होगा उसका रंग तो लगेगा ही, क्यों नहीं लगेगा। तो इस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, और फिर परमात्मा के गुणों को हम अनुभव करते हैं और उसके आधार से एक एक गुण की गहराई में चले जाते, क्योंकि समानता आ गई ना, वो शांति का सागर में शांत स्वरूप, और शांत स्वरूप बन शांति के सागर में खो जाओ, बहुत सुंदर चिंतन अनुभव होगा उस चिंतन से। अनुभव आरंभ हुआ, चिंतन बंद, इट्स अ फुलफिलमेंट। जैसे किसी से प्यार हुआ उसके नजदीक गए, संकल्प बंद, संकल्प बंद माना शून्य नहीं, वो फुलफिलमेंट है, एक भरपूरता की स्थिति है, उसमें खो गए हैं और उसी के धीरे धीरे अनुभूति होती है रियलाइजेशन की, हम कैसे उनके गुणों का स्वरूप बनते हैं। जैसे सूरज की किरणें एक कॉन्वेक्स लेंस से फोकस करते हैं और फोकल पॉइंट पर आप कागज रख दो तो क्या होगा, वो सूरज की किरणों के कारण और कॉन्वेक्स लेंस के कारण सूरज का प्रतिबिंब एक कागज पर हम देख सकते, इतना छोटा सा प्रतिबिंब बनता है पर इतना शक्तिशाली होता है जो उसी वक्त कागज को जला देता है, अग्नि निकलती है उस कागज से, उस फोकल पॉइंट पर जहां सूरज की किरणों को केंद्रित किया, तो वो शक्ति का केंद्रीकरण होने से ही एक शक्ति की अनुभूति होती है, परमात्मा के सारे गुण आत्मा में समा गए। इसीलिए कई समझते आत्मा सो परमात्मा बन गई, परमात्मा कोई बनता नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है परमात्मा जो हम जाके बनेंगे, वो तो सदा ही पिता है, लेकिन परमात्मा के गुण वो संपन्न स्वरूप में आत्मा को महसूस होते हैं, और वो अनुभूति एक सेकंड के लिए भी रही ना, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उस उपलब्धि में क्या होगा, अनेक जन्मों के पाप भस्म होंगे, यह उपलब्धि है। आत्मा का शुद्धिकरण होगा और उसी के अनुसार भले एक सेकंड भी अनुभव किया, उस उपलब्धि के बाद हम महसूस करते हैं शरीर के अंदर भी परिवर्तन आएगा। ये ब्लड प्रेशर, ये जो मसल टेंशन, स्वेटिंग, ये जो कुछ भी बीमारियां जो टेंशन से होती है, स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस, ये सब आपकी खत्म होती जाएगी। कल बताया ना, देखा ना कैसा परिवर्तन आ गया, हा? जैसे मौत के मुंह से वो निकल आया, अनुभव किया, देखा ना। यानी भले नाटक था लेकिन सचमुच ही अनुभूति है। और फिर उसके बाद हम महसूस करते हैं कि कैसे हमारे अंदर वो कामनेस, वो पीसफुल स्थिति, पॉजिटिव थिंकिंग, सदा परमात्मा के गुणों में खोए रहो, इतनी सुंदर अनुभूति होंगी। और हर कर्म भी हमारा श्रेष्ठ बनेगा क्योंकि परमात्मा की याद में हम करते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा इसका अनुभव करेंगे, बहुत सुना आपने, और महसूस करेंगे उस परमात्म शक्ति को कि कैसे परमात्मा के गुणों को हम अपने अंदर भरपूर कर रहे हैं। तो सीधा बैठेंगे और अंतर में खुशी लाएं, खुशी, खुशी और नशा। जैसे नशा चढ़ जाता है ना तो सब बातें और भूल जाती है, ये नशा चढ़े, मैं किसका बच्चा हूं, नशा होता है, मैं किसकी संतान हूं, उस ऊंचे से ऊंचे परमात्मा की संतान जिसको सारी दुनिया याद कर रही है, उसने मुझे अपनी पहचान दी है, मैं उनके सर्व गुणों का अधिकारी हूं, उनकी छत्र छाया के नीचे हूं, उनके साथ ही मेरे सर्व संबंध है। तो अंतर में खुशी और नशा, उस प्राप्ति की खुशी कि ये सारे गुण मेरे पास ही निहित हैं, मैं ही शांत स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप और शक्ति स्वरूप हूं। तो एक सेकंड में मन बुद्धि के द्वारा इस साकारी दुनिया से पार हो जाए और याद करे उस सच्चे धाम को, अखंड ज्योति के धाम को, एक सुनहरा लाल प्रकाश जहां मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं और मन की आंख उस शांति के सागर को निहारे जो रूप में ज्योति बिंदु है और गुणों में सिंधु के समान बेअंत है। शिव पिता, आप शांति के सागर हो, मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूं, शांत स्वरूप, शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर में खो जाए, समा जाए। और शांति की शक्ति का स्वयं में अनुभव करें। कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। मेरे चारों ओर शांति ही शांति है। एक हल्कापन, न्यारापन अनुभव हो रहा है। मीठे शिव बाबा, आपके साथ ही मेरे सर्वर संबंध है। आप ही मेरे सर्वस्व, आपका सानिध्य पाकर मैं आत्मा धन्य हो गई। जो पाना था वह आपसे सब कुछ पा लिया बाबा। धन्यवाद बाबा। धन्यवाद। मेरे सर्व संबंध एक शिव पिता के साथ है। मैं आत्मा शांति धाम की वासी हूं। इस सृष्टि पर मेहमान बन के आई। वापस उसी धाम में मुझे लौटना है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा उस परम ज्योति के सम्मुख हूं। जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान बेअंत है। उनसे निकलती हुई शांति और प्रेम की किरणें मुझ आत्मा को भरपूर कर रही है। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा रही हूं। चले जाएं उस गहराई में जैसे बूंद सागर में समा जाती। मेरे चारों ओर शांति ही शांति, प्रकाश ही प्रकाश। अब इसी शक्ति को स्वयं में भरपूर कर वापस लौटे। कर्म क्षेत्र पर इन गुणों का कर्म द्वारा प्रकट करें। यही योग है। इसी से जीवन जीने की कला आती है और हम सही रूप में सच्चे कलाकार बन जाते हैं। सारा विश्व एक परिवार महसूस होता है। ओम शांति शांति शांति।